नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज आप लोग इतने मंदिर में आए हो किस लिए? न्यू ईयर है इसलिए कि एकादशी है इसलिए? विश यू ऑल हैप्पी क्रिश्चियन न्यू ईयर। हम लोगों का डेली न्यू ईयर होता है, ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर होता है। हम लोगों का डेली न्यू ईयर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान नूतन है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस नूतन होता है हमेशा, हर एक दिन नया साल होता है। फिर भी चलो, जैन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, किसी प्रकार से न्यू ईयर के बहाने ही भगवान में मन लग जाए, दर्शन करने आए, चलो वो भी चलेगा। तो आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। हम लोग प्रत्येक एकादशी को श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, तो आज भी लीलामृत से पठन करेंगे, और उसके बाद जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस पर थोड़ा वार्ता करेंगे। मैं प्रायः कहा करता हूं, जैसा कि महाप्रभु से प्रश्न किया गया था कि वैष्णव कौन है, वैष्णव किसे कहते हैं, चेतन चेतावनी वर्णन है, जहार मुखे कृष्णाम से ही तो वैष्णव, जिसके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है वो वैष्णव कहलाता है। आगे बताओ, आगे बताते बताते एक बात आया है कि जिसको देख करके लोग कृष्ण का स्मरण करते हैं वह वैष्णव कहलाता है, वो कृष्ण का भक्त है, जिसे लोग देख करके अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण वाला है, तो वैष्णव कहलाता है। ऑफ कोर्स वेशभूषा इंपॉर्टेंट चीज है, तिलक कंठी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुद्धता। यदि हम शुद्ध रहें और भगवान के नाम में रति उत्पन्न हो गई हो, प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया हो भगवान का नाम जप करने में, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, तो इससे शुद्धता प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्यूरिटी द फोर्स, शुद्धता से बल प्राप्त होता है, और उसे लोग स्मरण करते हैं, देख करके कृष्ण को याद करते हैं। तो जो कृष्ण को याद दिलाता है वो कृष्ण का भक्त है, और जो प्रभुपाद जी को याद दिलाता है वह इस्कान का भक्त है। इस्कान का भक्त बनने का मतलब प्रभुपाद जी को याद दिलाना। इस्कान का यह कृष्ण का जन्मस्थली है इस्कान। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज बॉर्न इन द ओम ऑफ इस्कान। इस्कान जो है कृष्ण का जन्मस्थली है, तो प्रभुपाद को याद दिलाने वाला व्यक्ति इस्कान का भक्त होता है। तो सब प्रकार से अपने आचरण में हम ऐसा आचरण करें कि प्रभुपाद जी का याद लोगों को हो, लोगों को प्रभुपाद जी के विषय में बता करके, यहां तक कि नाच गान करके भी हम लोग नाचते हैं, हमें ऐसे नाचना चाहिए जैसा प्रभुपाद जी सिखाए। तो आप में से बहुत कांग्रेगेशन डिवोटी हो, आप लोगों को मंदिर में आकर सीखना चाहिए, पूछना चाहिए कि प्रभुपाद जी कैसा नाचना सिखाए थे। उसे कहते हैं स्वामी स्टेप। वैसे ही करताल बजाना, मृदंग बजाना, वैसे ही भगवान के विषय में बोलना, प्रचार करना। तो ये सब ज्ञान हो सकता है, प्राप्त हो सकता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर करके, प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर करके और भक्तों का संगति कर कर करके। प्रायः इंडिया में लोगों को एक कंसेप्ट है गुरु के विषय में। प्रभुपाद जी स्पेशल प्रकार के गुरु हैं, कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक वह जो फर्स्ट क्लास होता है, जो बिना कहे गुरु के मन को समझ जाता है, उनके दिल को, उनके इच्छा क्या समझ जाता है। दूसरा कहने पर समझता है, और तीसरा कहने के बावजूद भी नहीं समझता है। पूछता क्या गुरुजी ने कहा, उसका मतलब क्या हुआ, या यथावत फॉलो करने लगता है जैसा गुरुजी कहे। इस संबंध में मुझे एक कथानक याद आ रही है। एक बार एक गुरु थे और उनका एक चेला था। तो गुरुजी ने कहा कि देखो अभी हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है, तू हमारे साथ चलो और मुझे फॉलो करो जैसा मैं कहता हूं, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, बिल्कुल तैयार हो गया। गुरुजी के साथ में जा रहा था, गुरुजी घोड़े पर चढ़े हुए थे और चेला पैदल जा रहा था। कुछ समय के बाद गुरुजी रुके कहीं पर, उन्हें प्यास लगा था, तो उन्होंने कहा कि बेटा पानी लाओ। तो वो लोटा ढूंढ रहा था ना, बोला कि लोटा में पानी लाओ। तो शिष्य कहता है लोटा तो गिर गया। कहा कि लोटा गिर गया, तूने उठाया क्यों नहीं लोटा जब गिर गया। तो चेला कहता है गुरुजी आपने कहा नहीं था उठाने के लिए, मैं आपका इंस्ट्रक्शन पालन कर रहा था, आपने कहा नहीं था कि उठाने के लिए। ठीक है भैया, ठीक है थोड़ा सावधानी से रहो, देखो यदि कुछ भी घोड़ा पर से गिरता है तुम उठा लेना। तो कुछ आगे बढ़े तो घोड़ा पैखाना करने लगा, तो चेला पूरा पैखाना उठा लिया और लाकर गुरु जी कहा गुरु जी ये घोड़ा ने दिया है। तो गुरु जी को बहुत गुस्सा, मूर्ख कहें क्या तो मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं मैं ही मालूम है। कहा गुरु जी ने आपने ही कहा था, आपने जो कहा था वो मैंने किया। तो कुछ समय के बाद गुरु जी ने कहा कि बेत तुम मूर्ख आदमी है, तुम्हें मालूम कुछ नहीं है, चलो अब तुम कुछ भी मत उठाना है? जो मैं कहता हूं ऐसा ही करो, कुछ भी मत उठाना। तो आगे जा रहे थे तो घोड़ा कुछ हुआ और वह डिस्टर्ब हो गया और घोड़ा जंप कर गया और गुरुजी गिर पड़े। गुरुजी गिर पड़े, चोट लगा हुआ है गुरुजी को, गिरे हुए हैं। और जो शिष्य था वो भी खड़ा होकर दिख रहा था गुरुजी को गिरे हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा रे तू देख रहा है मैं गिरा, उठाता नहीं है। कहा गुरुजी आपने ही नहीं कहा ना कि गिरता है उसको उठाना मत, तब गिर के मैं उठा रहा हूं। तो ए तीसरे प्रकार, तो ऐसा हमें फुलिश डिसाइपल नहीं बनना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि भक्तों का संगति करें, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ें। और प्रभुपाद जी लीलामृत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रभुपाद जी के जीवन काल संबंधी वार्ताएं हैं, भक्तों के साथ में जैसा उनका संग था, भक्तों को क्या क्या उपदेश दिए, बहुत कुछ बातें हैं। साथ साथ पब्लिक में मिले प्रभुपाद जी, उन लोगों से वार्ता किए, इन सब का विशद वर्णन प्रभुपाद लीलामृत में है। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। हम 6:30 बजे घूमने जाएंगे। एक दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम मुझे पार्क तक गाड़ी में ले जा सकते हो। प्रभुपाद जहां भी रहते थे प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, जुहू बीच मॉर्निंग वॉक के लिए, लॉस एंजलिस, जहां भी रहते थे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। कई भक्त गोल्डन गेट पार्क की स्टोव झील तक उनके साथ गए। वे उस पार्क से अच्छी तरह परिचित थे और श्रील प्रभुपाद को सुंदर झील की चारों ओर घुमाते हुए पुल के ऊपर से जंगल से घिरे हुए मार्गों से होते हुए एक छोटी नदी के ऊपर पार तक ले गए। उन्हें आशा थी कि प्रभुपाद प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से प्रसन्न होंगे। जब वे तेजी से चल रहे थे तो बीच बीच में किसी वृक्ष की ओर संकेत करने या किसी फूल का परीक्षण करने के लिए वे रुक जाते थे। यह कौन सा पेड़ है, वे पूछते, यह कौन सा फूल है। यद्यपि उनके शिष्यों के पास प्रायः इन प्रश्नों के उत्तर न थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के जंगल में से होकर निकलते उन्होंने कहा तो सभी पौधे वृक्ष और लताएं उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते और इनकी उपस्थिति से आनंद विह्वल हो उठते। वहां पेड़ पौधों का जीवन भी आध्यात्मिक आकाश जैसा ही था, पूर्ण चेतन। और ये वृक्ष स्वामी जी ये कितने चेतन हैं। ओ जीवात्मा यहां भी है, प्रभुपाद ने कहा, किंतु चेतना अस्थायी रूप से अवरुद्ध है, बोध अधिक सीमित है। प्रभुपाद जी जब भी कोई वस्तु देखते थे तो उसका संबंध कृष्ण से देखते थे, कृष्ण के सृष्टि से देखते थे। तमाल कृष्ण महाराज एक बार बतला रहे थे कि एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। उन दिनों बीच नहीं गए थे, वो बेजर्ट एक एरिया है, 3 रिवर, उस एरिया में गए थे। वहां बहुत से ऑरेंज के वृक्ष हैं चारों तरफ। तो ठीक ऐसा ही प्रश्न प्रभुपाद जी पूछने लगे भक्तों से कि यह क्या है। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी यह ऑरेंज का वृक्ष है। दूसरे के विषय में पूछे तो उसने कहा कि यह फूल है। दो चार बार पूछे तो एक झाड़ी था। प्रभुपाद ने कहा यह क्या है, तो डिवोटी कहता है प्रभुपाद दिस इज यूजलेस क्रीपर, ये बिना किसी काम का नहीं है। तो प्रभुपाद जी के हाथ में हमेशा वो छड़ी था, वो छड़ी खड़ा कर दिए। अरे तू कैसे कह सकता है कि यूजलेस क्रीपर है, यू आर यूजलेस। तमाल कृष्ण महाराज बतला रहे प्रभुपाद जी कैसे अहंकार को नष्ट कर। तमाल कृष्ण महाराज को जो जानता है वो जानता है, बड़े इंटेलिजेंट तमाल कृष्ण महाराज, इस्कॉन में सबसे इंटेलिजेंट डिवोटी थे तमाल कृष्ण महाराज। और प्रभुपाद जी का बड़ा ही उन पर विश्वास था। तो सब लोग शौक हो गए कि तमाल कृष्ण महाराज के प्रभुपाद जी कहते हैं यू आर यूजलेस, सन्नाटा छा गया। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि यह भगवान की सृष्टि है, एक कृष्ण की सृष्टि है। कृष्ण अपने सृष्टि में कोई ऐसे चीज का सृष्टि नहीं किए हैं जिसका कोई प्रयोग नहीं है, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि इसका प्रयोग कहां है, इसलिए कह रहे हो कि यूजलेस। अब बताओ तुम यूजलेस है कि क्रीपर यूजलेस है? तुम्हें ज्ञान नहीं है कि क्रीपर का किस लिए है? यू आर यूजलेस, नॉट द क्रीपर। तो प्रभुपाद जी सब कुछ में भगवान को देखते थे, सबका संबंध भगवान से देखते थे। यही वैष्णव का दृष्टि है। वैष्णव दृष्टि मतलब सबका संबंध भगवान से है। जन्मादस्तन्यादर्तहचार्थे सविज्ञ स्वराट, सब कुछ भगवान से निकला हुआ है और सबका संबंध भगवान से है, यही देखना कृष्ण भावना है। प्रभुपाद जिस चीज पर भी दृष्टिपात करते थे उसे शास्त्र की दृष्टि से देखते थे और सर्वसाधारण जीवों पर उनकी टिप्पणी दिव्य शिक्षा से पूर्ण होती थी। चलते चलते उन्होंने ऊंचे स्वर से चिंतन किया, जो लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं उन्हें पहले ईश्वर को देखने के गुण अपने में विकसित करने चाहिए, उनका परिष्कार होना जरूरी है। जैसे अभी बादल सूर्य को आच्छादित किए हैं, वे कहते हैं ओ सूर्य नहीं निकला है, किंतु सूर्य निकला है, केवल हमारे नेत्र ढके हैं। पथ दर्शकों की भांति वे लड़के प्रभुपाद को और अधिक सुंदर क्षेत्रों में ले गए। वे वहां पहुंचे जहां हंस झील में तैर रहे थे। श्रीमद् भागवत प्रभुपाद ने कहा, भक्तों की तुलना हंसों से करता है, भक्तों की तुलना हंसों से करता है और भगवान कृष्ण के साहित्य की तुलना सुंदर स्वच्छ झील से। तो प्रभुपाद जी यहां भी एक देखने को मिला कि प्रभुपाद जी कैसे सब चीज का संबंध कृष्ण से देखते थे। एक मुझे और बात याद आ रही है, डॉक्टर पटेल कहते थे, और यही बात तमाल कृष्ण महाराज भी एक बार बतला रहे थे कि प्रभुपाद जी एक बार आए और मॉर्निंग वॉक के लिए जुहू बीच गए तो बहुत लोग प्रभुपाद जी से मिलते थे, बोलते नहीं थे, तो प्रभुपाद जी अपने तरफ से उनको बोलते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सब भक्त लोग थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभुपाद जी लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं, हरे कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो भक्तों के मन में ये उत्सुकता थी और प्रभुपाद जानते थे कि भक्तों के मन में उत्सुकता है। तो वे आए अपने कमरे में, तो स्वाभाविक भक्त लोग आए तो प्रभुपाद देखे भक्तों की तरफ और पूछे कि आप सब लोग ठीक हो, आप लगता है कि आप लोगों के मन में कोई सुखता है। तमाल कृष्ण महाराज हाथ उठाए और कहे प्रभुपाद जी जब हम आज हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तो आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे थे, हरे कृष्ण क्यों नहीं बोले। आप बोलते हैं हमेशा हरे कृष्ण बोलना चाहिए, लोगों को कृष्ण का स्मरण दिलाना चाहिए, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोले। प्रभुपाद जी कुछ भी उत्तर नहीं दिए, चुप, कुछ नहीं बोले और अपना और जो काम था करते रहे। दूसरे दिन फिर मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो सब लोग जो प्रभुपाद जी जिनको गुड मॉर्निंग बोले थे, दूसरे दिन वे लोग स्वामी जी हरे कृष्णा, स्वामी जी जय श्री कृष्णा, स्वामी जी हरे कृष्णा, स्वामी जय श्री कृष्णा, सब लोग। तब प्रभुपाद जी बड़े खुश थे, आकर के फिर क्वार्टर में बैठे, सब भक्त लोग फिर बैठे तो कहा कि देखा कल मैं गुड मॉर्निंग बोला और आज वो लोग हरे कृष्ण बोले। तो संबंध, संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। कभी कभी जब हम नहीं जानते हैं और किसी को हरे कृष्ण बोल देंगे तो ही मे फील ऑफेंडेड। कभी कभी लोग पता नहीं क्रिश्चियन है क्या है क्या है, ऑफेंडेड फील करेगा, लेकिन पहले संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान में लगाना है, और लगाने का एक्सपर्ट तरीका प्रभुपाद जानते थे। आगे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जो भक्त नहीं है वे को, अच्छा हाँ यहां पर वो तुलना दिए, तुलना किए कि भागवत महापुराण जो है वो सुंदर स्वच्छ झील के समान है और भगवान के जो भक्त लोग हैं वो हंस के समान हैं। कौवे लोग के विषय में भागवतम बताया गया है और हंस के विषय में बताया गया है। तो हंस लोग भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत कथा कहते हैं, लोगों को भागवत के विषय में सुनाते हैं, और कौवे लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर और संसार की बात में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भक्त नहीं है वे कौवों की तरह हैं, वे संसारिक विषय रूपी कूड़े कचरों से आकृष्ट होते हैं। एक कंकरीले मार्ग पर चलते हुए वे रुक गए और उन्होंने लड़कों का ध्यान आकृष्ट किया। इन कंकड़ियों को देखो, जितनी कंकड़ियां यहां हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में असंख्य जीव रहते हैं। तो एक भी समय ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी का जब वे कृष्ण को नहीं देखते थे। सब जगह कृष्ण का दर्शन करते, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणी गव्य हस्तिनी सुनिचैव सपाकिच पंडितासम दर्शिना, कण कण में भगवान का दर्शन प्रभुपाद जी करते थे, और ये प्रमाण यहां पर इससे मिलता है। तालाब को देख करके और हंस को देख करके वहां पर कृष्ण का दर्शन किए और भागवत का स्मरण किए, इन कंकड़ों को देख करके, छोटे छोटे पत्थरों को देख करके भागवत का स्मरण किए, भगवान का स्मरण, कैसे असंख्य जीव हैं इस ब्रह्मांड में। भक्तों को स्वामी जी को एक घाटी में ले जाने में बड़ी प्रसन्नता हुई। इसकी झाड़ियां सफेद और पीले फूलों से पूरी तरह आच्छादित थी। वे अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि वे कृष्ण को स्वामी जी की दृष्टि से देख पा रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे जब प्रभुपाद ने पार्क में फिर जाना चाहा तो उनके साथ और अधिक भक्त हो लिए। उन्होंने औरों से सुन रखा था कि टहलते समय स्वामी जी किस तरह भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। लड़के उन्हें झील के चारों ओर नए मार्गों से ले जाने के लिए फिर तैयार थे, किंतु अपनी योजना में किसी परिवर्तन की घोषणा किए बिना वे पक्की सड़क पर झील के निकट घूमते रहे। प्रभुपाद और उनके अनुयायी सोती हुई बत्तखों के एक झुंड के पास पहुंचे। लोगों के चलने की आवाज से जगकर बत्तखें कां कां करने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी और वहां से जाने लगी। जब कुछ भक्त बत्तखों को प्रभुपाद के मार्ग से भगाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े तो बत्तख चीख और नाराजगी की आवाज करने लगी, बत्तखों रास्ते से हट जाओ। एक भक्त ने कहा, तुम लोग स्वामी जी को परेशान कर रहे हो। प्रभुपाद ने शांत भाव से कहा, जैसे हम सोच रहे हैं कि वे हमें बाधा पहुंचा रहे हैं, वैसे ही वे सोच रहे हैं कि हम उन्हें बाधा पहुंचा रहे हैं। यह है प्रभुपाद जी का दृष्टि। वैष्णव लोग अपने लिए नहीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पड़ायो जाने रहे, वो दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। हम लोग सुबह से शाम अपने को देखें, हम कितने लोगों को डेली तकलीफ देते हैं। प्रभुपाद जी यहां पर बत्तख को भी तकलीफ देने जा रहे हो, कह रहे थे कि तुम लोग सोच रहे हो कि स्वामी जी के रास्ते में अवरोध बन रहे हैं, वे लोग तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन वे लोग सोच रहे हैं कि हम प्रभा सही है, यह है दिव्य दृष्टि, यह है भगवत दृष्टि। इससे मुझे एक बात और याद आती है कि ऐसा दृष्टि प्राप्त करने के लिए भागवत के पन्ने पन्ने में एक वर्ड में है। उदाहरण के लिए हम लोग नामापराध वैष्णव अपराध पढ़ तो लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन यदि अपने मनस्पटल पर इसको हमेशा रखें कि मैं जो काम कर रहा हूं उसे किसी वैष्णव को दुख तो नहीं हो रहा है, हमारे व्यवहार से, हमारे आचार से, हमारे वाणी से किसी वैष्णव को दुख नहीं पहुंच रहा हो, दुख पहुंच रहा तो वैष्णव अपराध है। ब्लास्फेम करना तो वैष्णव अपराध है ही, दुख पहुंचाना भी वैष्णव अपराध है। तो ये अपराध से भी हम यदि बच जाए, यदि अपराध से हम बच जाएंगे तो स्वाभाविक ऐसा दृष्टि प्राप्त हो सकता है। अपराध का मतलब होता है अपराध, अप मतलब खत्म करना और राध मतलब प्रेम। प्रेम को जो खत्म कर दे, जो यादगारी को नष्ट कर दे, भागवत में प्रेम जो है, प्रभुपाद जी के वाणी में जो प्रेम है उसको जो खत्म करता है वो है अपराध। यदि अपराध शून्य होकर के भजन करेंगे, अपराध शून्य हो जा करे भजन दयाल निताई चैतन्य बोलो नाच रहे हमार मन, तो अपराध शून्य होकर के भजन करेंगे तो ऐसा दृष्टि हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी हम सब लोगों के लिए दृष्टि दिए हैं। प्रभुपाद एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए और उन्होंने जमीन पर पड़ी कुछ चिटियों की बीट की ओर संकेत किया। इसका क्या मतलब है? अपने बगल में खड़े एक नए लड़के की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा। प्रभुपाद का चेहरा गंभीर था, लड़का शर्मा गया। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। प्रभुपाद गंभीर बने रहे, वे उसकी व्याख्या की प्रतीक्षा में थे। भक्त उनकी चारों ओर जमा हो गए। बीट को ध्यानपूर्वक देखते हुए लड़के ने सोचा कि स्वामी जी बीटों की शकल में छिपा कोई गुप्त अर्थ उसे जानने की आशा कर रहे होंगे। जैसे लोग चाय की पत्तियों में भविष्य की बातें पढ़ते हैं, उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। यह मल है चिटियों का किबिट। प्रभुपाद मुस्कुराए और अन्य लोगों की ओर उत्तर के लिए मुड़े, सब मौन थे। इसका मतलब है, प्रभुपाद ने कहा, कि ये चिड़िया इसी पेड़ में 2 सप्ताह से अधिक समय से रह रही है। आप समझोगे ना, सॉरी चिटिया नहीं है, चिड़िया थी, मैं पढ़ने में गलती कर दिया। पेड़ पर चिड़िया होगी और पैखाना की होगी नीचे, और बहुत पैखाना जमा हो गया था। तो प्रभुपाद जी उस पैखाना को भी देख करके और भक्त से पूछे इसका मतलब क्या है, उससे भी कुछ शिक्षा प्राप्त हुई। अरे भक्त नहीं बता पाए तो प्रभुपाद कहेगा इसका मतलब कि चिड़िया बहुत दिन तक इस पेड़ पर थी, क्योंकि यहां पैखाना की है, इसका पहचाने है। वे यहां से चिड़िया भी अपने निवास स्थान से अनुराग रखती है। फिलॉसफी प्रभुपाद जी दिए कि चिड़िया भी अटैच रहती है अपने घोंसले से, जैसे हम लोग अटैच रहते हैं। जब प्रभुपाद सफल बोर्ड कोर्ट और चेकर्स आदि खेल खेलते हुए बुड्ढों के पास से गुजरे तो वे रुक गए और लड़कों की ओर मुड़े। जरा देखो, ये अंग्रेजी में अच्छा समझ सकते हैं, हिंदी वाला थोड़ा कठिन लग रहा है ना। वो ऐसे क्या बोलते हैं, कैरबोर्ड है? कैरबोर्ड ना, कैरम बोर्ड है, अंग्रेजी जानते हैं कैरम बोर्ड, हिंदी बड़ा थोड़ा तकलीफ लगता है। जब प्रभुपाद सफल बोर्ड कैरम बोर्ड है कोर्ट और चेकर्स आदि खेल खेलते हुए बुड्ढों के पास से गुजरे तो वे रुक गए और लड़कों की ओर मुड़े। जरा देखो, उन्होंने कहा, इस देश में वृद्ध लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या करें, इसलिए वे बच्चों की तरह खेलते हैं और अपने अंत के दिन व्यर्थ खोते हैं, जिनका उपयोग कृष्ण भावनामृत के विकास में होना चाहिए। उन्हें बच्चे बड़े होकर चले उनके बच्चे बड़े होकर चले गए हैं, इसलिए आध्यात्मिक विकास करने का उनके लिए यह उपयुक्त समय है। लेकिन नहीं, वे कोई बिल्ली या कुत्ता रख लेते हैं और ईश्वर की सेवा के बदले बिल्ली कुत्ते की सेवा करते हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वे सुनेंगे नहीं, उनके मार्ग निश्चित हो चुके हैं। इसलिए हम युवकों से बात कर रहे हैं जो खोज के मार्ग में हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी यहां पर यह बात बतला रहे हैं कि हम लोगों का जो जीवन अवधि है उसको ऐसे बांटना चाहिए, अपने जीवन को ऐसे पालन करना चाहिए कि जीवन के अंत में नारायण का स्मरण हो सके, और वही मानव जन्म की सफलता है। जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति। वर्णाश्रम धर्म में ऐसा व्यवस्था किया गया है, बचपन पढ़ाई लिखाई समझदारी में, ब्रह्मचारी जीवन, शास्त्र को समझने में, जीवन क्या है जीवन के संबंध में समझने के लिए, गृहस्थ जीवन, जीवन को यापन करने के लिए कुछ करना पड़े इत्यादि उसके लिए, और उसके बाद जो वृद्धावस्था है वो हरि भजन करने के लिए। देखिए, ये अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हुआ है। 25 साल तक जो ब्रह्मचारी आश्रम जो पढ़ने का है आज भी है, भले ब्रह्मचारी आश्रम ना हो लेकिन पढ़ने का समय है। 25 के बाद जो है वह पैसा कमाने का और 50 के बाद 60-70 के बाद जब बच्चे, जैसे चिड़िया के जो बच्चे होते हैं घोंसले में कब तक रहते हैं, छोटे होते हैं, जब बड़े होते हैं चले जाते हैं। तो आजकल वही हो गया है, जब बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह हो गया तो उनका डेरा अलग हो गया, बाप मां पुनः अकेले के अकेले है? जैसे पहले जीवन था वैसे ही। लेकिन पहले जीवन में और अब के जीवन में, जब शादी विवाह हुआ था उसके जीवन में और आज के जीवन में बहुत अंतर हो चुका है। पहले के जीवन में जीने के लिए कुछ आशा था, क्यों कठिन काम करते, क्यों परिवार होगा, बच्चे होंगे, पढ़ाएंगे इत्यादि, और चूंकि हरि भजन में नहीं किए हैं तो बुढ़ापा का जो समय है लाइफ ऑफ डिप्रेशन, समझ में क्या करें, बच्चे बड़े हो गए चले गए, पहले नाती पोते वो भी नहीं है, नाती पोते भी नहीं है, भजन तो किए नहीं है, भजन में तो उनको इंटरेस्ट है नहीं, तो सोचते रहते हैं जीवन में क्या क्या किए, उसी चीज को सोचते हुए बोलते हैं आई हैव टाइम पास करना है। टाइम हमें पास करने के नहीं, टाइम हमें पास करेगी, टाइम हमें पास करेगी, टाइम हमारे बस में नहीं है। इसीलिए हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए अपने जीवन को बचपन से ही, और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को प्रिपेयर करता है तो उसे जब बच्चे बड़े हो जाए, वृद्धावस्था हो जाए, तो आसक्ति इजली हो जाता है, उसे छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं रहती है, उसे भगवान में अनुराग ज्यादा उत्पन्न होता है और भगवत भजन करता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और यह जो तरीका है ये हायर टेस्ट प्राप्त करने का तरीका है।
रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तति। जब हायर टेस्ट प्राप्त होता है तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाता है। तो इस संसार का जो टेस्ट है, पुत्र परिवार इत्यादि का टेस्ट जो है, ये चपल सुख है। चपल सुख लवला गिरे, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है। लेकिन असली जो हैप्पीनेस है वह भजन करने में है। और भक्त लोग इसको जानते हैं, हायर टेस्ट प्राप्त कर लेते हैं तो उनके लिए चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो कोई तकलीफ नहीं है। उदाहरण है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हम लोग देख रहे हैं कैसे कृष्ण को देख रहे हैं समस्त वस्तुओं में। हम लोगों को उस स्टेज पर आना चाहिए। तो यह अच्छा समय है, जो लोग 25 साल से पहले हैं वो लोग खूब अच्छा तरह से पढ़ लें भागवत इत्यादि। अभी अंदर डाल लो, सब भागवत का श्लोक याद कर लो, गीता का श्लोक याद कर लो, बाद में बुद्धि मोटी हो जाती, उतना याद नहीं होता है। जो जवान लोग हैं, जवानी में भक्त बने हैं, तो बचपन वाला तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जवानी का आम सदुपयोग कर सकते हैं, प्रगाढ़ हरि भजन कर कर करके। और जब हरि भजन में मन लगेगा, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो बुढ़ापा में अनायास ये होगा, भजन होगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से। जब प्रभुपाद और लड़के केजर ड्राइव के पास एक ढलान वाले हरे मैदान से गुजर रहे थे, तो लड़कों ने उन्हें दिखाया कि प्रसिद्ध हिप्पी हिल यही है। प्रातः काल की बेला में मंद ढालू पहाड़ी और यूकलिप्टस और बांज के वृक्षों से घिरा शांत घास का मैदान उस समय नीरव और निस्तब्ध था, लेकिन कुछ घंटों में सैकड़ों हिप्पी उस घास पर इकट्ठे हो जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे और तरंग में झूमेंगे। प्रभुपाद ने लड़कों को वहां जाकर कीर्तन करने का उपदेश दिया। कीर्तन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का इंपॉर्टेंट पार्ट है कीर्तन करना। कीर्तन में सही में आनंद आता है। जो आनंद कीर्तन में आता है, जो नाचता है गाता है कीर्तन में, हमेशा वो नाचता रहेगा। नाचने से पवित्रता प्राप्त होती है। भगवान के सामने नाचें, ऊर्ध्व बाहों कह कर करके और भगवान का नाम लेते हुए नाचें। तो मैं कहता हूं ये फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही, साथ साथ मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है। ये नाचना जो है वो योग सिस्टम में ये सर्वांग योग है, सभी अंगों के लिए योग है नाचना। तो नाचना चाहिए कीर्तन में, जितना हो सके नाचें और गाएं, यही काम है। चैतन्य महाप्रभु ने यही किया, प्रभुपाद ने यही किया और सिखाया हम लोगों को। अब थोड़ा भक्त लोग कम नाचते हैं, तो हम लोगों को अभी अध्याय समाप्त हुआ 12वां अध्याय, और नेक्स्ट टाइम से 13वां अध्याय होगा। तभी आगे कार्यक्रम है, हिजोलने सदागुंद महाराज भी आ गए हैं, तो वो कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा जैसा कि सिंह प्रभु ने कहा। तो हम यहीं पर इसका विराम करेंगे और हम सब लोग नाचें और गाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस प्रकार से प्रसन्न है, चैंट एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।